ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए किसान कल्याण के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
रमेश चंद जी, मोदी सरकार जो भी नई बनी है, इसका पूरा फोकस अभी हमें दिख रहा है कि किसानों पर है। सरकार ने आते ही कई फैसले लिए हैं, और अगर कैबिनेट की पहली बैठक की हम बात करें तो पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के फैसले पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये जो निर्णय रहा सरकार का, इसे आप किस तरह से आंकते हैं?
मैं इसे ऐसे देखता हूं, जब हम कोई भी चीज किसानों के लिए करते हैं तो वो एग्री फूड सेक्टर के लिए भी होती है। तो जो हमारा एग्री फूड सेक्टर है उसमें लगभग 46% जो हमारी वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो लगभग वो हमारी आधी पॉपुलेशन जो है उसका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से आता है। और दूसरा, एग्रीकल्चर का योगदान हमारी इंडिया की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग के लगभग बराबर है। 18-20% राष्ट्रीय आय हमारे एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर है वहां से आती है। और जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक सपना है उनका देश के बारे में कि हमने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर का कोई हमारे पास जो आंकड़े हैं कि उसके लिए जो हमें ग्रोथ रेट चाहिए उसमें 13-14% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसको कंट्रीब्यूट करनी होगी। और दूसरा, विकसित भारत के दो भाग हैं, एक तो ये कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो अभी $2300-2400 है इससे बढ़कर $13,500 क्रॉस कर जाए आज की प्राइसेस में, लेकिन दूसरा ये है कि वो ग्रोथ इंक्लूसिव हो, उस ग्रोथ से सबका विकास हो। और ऐसे बहुत से स्टडीज हैं जो ये दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर की होती है। तो इस बड़े संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने सबसे पहला जो अपना ध्यान है वो किसानों की ओर किया, और प्रधानमंत्री जी ने पहली फाइल जिस पे हस्ताक्षर किए वो पीएम किसान निधि की जो एक इंस्टॉलमेंट है उसे रिलीज करने के लिए किया। और दूसरा, कल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया कि जो हमारी 14 खरीफ की फसलें हैं जिन पर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं, और उनके लिए भी एक बड़ी टाइमली घोषणा की गई। और यदि आप उस वृद्धि को देखो तो वो इवन 11% तक भी वृद्धि है, जैसे रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 11% की वृद्धि है, अधिकांश फसलों में 5-7% की वृद्धि जो है की गई है। अब यदि आप इसको देखो कि बाकी जो प्राइसेज हैं वो किस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो 4.78% के पास है, और जो होलसेल प्राइसेज का हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो तो 2% से भी नीचे है। तो रियल टर्म्स में जो एग्रीकल्चर की प्राइसेज हैं, जो कि एनडीए के पिछले 10 साल में निरंतर होता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, फूड सेक्टर की रियल प्राइसेस, उसमें जो ग्रोथ रेट है एक पॉजिटिव है। रियल प्राइसेस मीन के जो ग्रोथ एग्रीकल्चर प्राइसेस में है वो नॉन एग्रीकल्चर की प्राइसेस से ज्यादा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलता है, उनकी आय में एक वृद्धि होती है। तो इस बार केवल एक फसल को यदि हम छोड़ दें तो बाकी 13 फसलों में जो वृद्धि दी गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में वो इन्फ्लेशन रेट दोनों सीपीआई और होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस के इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि रियल टर्म्स में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष पिछले साल से ज्यादा है।
प्रोफेसर साहब, अगर सरकार के निर्णयों की हम बात करें तो किसानों को जो ये बड़ी सौगात दी है जिसका जिक्र अभी आपने किया कि एमएसपी बढ़ाया गया 14 फसलों का, तो कृषि से जुड़े हुए अन्य जो क्षेत्र हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण फैसला है ये?
कृषि को ब्रॉडली 4-5 इसके सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट उसका है कि हमारा क्रॉप सेक्टर जो फसलें हैं जिसके आगे दो भाग हैं, एक हॉर्टिकल्चर है और एक उसका हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, नॉन हॉर्टिकल्चर है, जिसमें सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन ये आते हैं। और हॉर्टिकल्चर में हमारे फल सब्जियां कॉन्डिमेंट स्पाइसेस इस तरह की क्रॉप आते हैं, तो एक ये सेगमेंट है। दूसरा हमारा लाइफ स्टॉक का सेक्टर है, डेयरी मिल्क सेक्टर, मीट एग, और तीसरा फिशरी का सेक्टर है। हम कई बार फॉरेस्ट्री को भी इसमें लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर फॉरेस्ट्री पब्लिक सेक्टर में आती है, कुछ फॉरेस्ट्री ही इसमें जो है प्राइवेट में आती है। तो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के ये सेगमेंट है। तो यदि आप ग्रोथ रेट को देखो तो हमारा फिशरी सेक्टर पिछले 10 साल में 8-9% हर वर्ष उसमें वृद्धि दर आता रहा है। इसी तरह यदि हम लाइफ स्टॉक सेक्टर को देखें तो उसमें 5-6% हर वर्ष जो उससे आय हमारी हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन रियल टर्म 11-12 की प्राइस में, वो उसका वृद्धि दर रहा है। तीसरा हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है, फल सब्जियां कॉन्डिमेंट स्पाइसेस, तो इसका भी ग्रोथ रेट लगभग 4% के लगभग हमारा रहा है। जो हमारी बाकी क्रॉप्स हैं जो लगभग 90% एरिया से भी ज्यादा में ग्रो होती हैं, तो उनका ग्रोथ रेट वेरी करता है, अलग अलग है उसके, सीरियल का, पल्सेस का। लेकिन यदि आप उनमें देखो कि जैसे हमारा पल्सेस है, देश में पल्सेस की कमी है, देश में एडिबल ऑयल की कमी है, तो उसकी ओर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने पिछले कुछ सालों में जैसे राइस और बीट की खरीद पहले होती थी, अब MSP पे दालों की भी जो खरीद है, एक PSS स्कीम है, उसके अंडर उनकी भी एक खरीद होती है। इसी तरह हम हॉर्टिकल्चर की ओर जाएं, अब हमारा जैसे मेन क्रॉप्स आलू और प्याज है, प्याज के लिए सरकार ने एक बफर स्टॉक बनाया है और नेफेड उसको खरीदती है। कुल मिलाकर यदि आप पिछले 10 साल 14-15 में जब से ये NDA सरकार आई आप देखो, तो सबसे पहले तो वो क्रॉप जिनको MSP पे प्रक्योर किया गया उनका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। दूसरा, पहले MSP का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 3-4-5 स्टेट तक ही रहता था, लेकिन अब आप पाओगे जो 15-16 स्टेट्स में MSP जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है, और अब नए जो स्कीम्स हैं उनको भी डिस्कशन चल रहा है कि इसको हम पूरी तरह से कैसे इसको सभी जो हमारी 23 क्रॉप हैं उन पे उसको असरदार बना दें। इसी तरह हॉर्टिकल्चर के लिए MIDH मिशन इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की इनकम फील्ड क्रॉप से ज्यादातर स्टेट्स में 4-5 गुना है। इसीलिए जिन जिन स्टेट्स में हमारा हॉर्टिकल्चर आ रहा है उनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो रहा है। और इसके साथ ही 15-16 में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम उसको नया रूप देकर आगे आए, तो जो हमारा सरफेस इरिगेशन या कनाल इरिगेशन है 16-17 के बाद में हमारा कुल एरिया जो इरिगेशन का है वो हर साल 1% बढ़ता जा रहा है, और अब हम लगभग 53% इंडिया का एरिया अंडर इरिगेशन हो गया। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों से जब से हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई उसके इतने ज्यादा प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं, और अभी वो इम्प्लीमेंटेशन भी उनका होने जा रहा है, कि हमारा देश छोटे किसानों का देश है, उनको स्केल देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हर प्राइमरी लेवल पे, गांव के लेवल पे कोऑपरेटिव को सुदृढ़ बनाकर, ताकि कोऑपरेटिव प्रोक्योर करे, कोऑपरेटिव उनको स्टोरेज की फैसिलिटी दे, यहाँ तक के कोऑपरेटिव किसानों के लिए इवन एक्सपोर्ट भी करे, तो ये एक और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला इनिशिएटिव पिछले 2 साल से शुरू हुआ है, जिसके आगे हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको भी रिकास्ट किया गया इरिगेशन की स्कीम की तरह, और पहले ज्यादातर लोनी फार्मर जो है वो ही इंश्योरेंस कराते थे, लेकिन अब जो किसान जिन्होंने बैंक से लोन नहीं भी लिया और उनकी अपनी मर्जी है वो इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं, उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उनका शेयर इंश्योरेंस में जो है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है।
प्रोफेसर रमेश जी, सरकार का ध्यान मोटे अनाज पर भी रहा है और लगातार इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आपसे पूछना चाहूंगा कि मोटे अनाज को लेकर के आगे की राह किस तरह से तय होगी, क्या सरकार इसको लेकर के कुछ अन्य योजनाएं लेकर आ सकती है?
जिनको हम मिलेट्स कहते हैं, अब हम इसको अन्नश्री के नाम से इसको जो है क्लासिफाई करते हैं या न्यूट्री सीरियल के नाम से करते हैं। हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी यूनाइटेड नेशन में सेलिब्रेट कराया। मिलेट्स की बहुत आवश्यकता है दो कारणों से। एक तो यह है कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी सुपीरियर होती है, तो ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिलेट का शेयर हमें कंजम्पशन में इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, क्योंकि मिलेट्स हार्डी क्रॉप्स हैं, ये मॉइस्चर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस इसको बेटर बियर कर लेते हैं। एक फ्यूचर की क्रॉप है क्लाइमेट चेंज के एंगल से। लेकिन इन क्रॉप्स की ट्रेजेडी ये रही है कि ये टेक्नोलॉजिकली ऑर्फन क्रॉप्स कहते हैं इनको, कि इनमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक दो मिलेट को छोड़कर बाकी मिलेट्स में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई। इसीलिए सरकार ने पिछले बजट में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस मिलेट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में शुरू किया। इसके लिए रिसर्च के लिए भी जो पैसा था उसको इंक्रीज किया गया, और इसकी एमएसपी को भी इस बार यदि आप देखो सबसे ज्यादा वृद्धि जो रागी है उसमें दी गई है, और वो 11% है। बाकी फसलों से दो गुना वृद्धि जो है रागी में दी गई है, केवल इसीलिए कि हमें इनके उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है पर्ल मिलेट में, ज्वार में और रागी में, इसको किसानों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा बल सीड पे दिया गया है, क्योंकि सीड कैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी है। सीड उस टेक्नोलॉजी को किसान के वहां लेकर जाता है, और दोनों सीड और फर्टिलाइजर का टाइमली अवेलेबिलिटी, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी, तो ये सभी केंद्र और स्टेट की एजेंसीज मिलके मिलेट का विशेष तौर पर और दालों का विशेष तौर पर, लेकिन बाकी क्रॉप्स का भी पब्लिक सेक्टर में सीड जो है इसको काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, और उसका एविडेंस है सीड रिप्लेसमेंट रेट। यदि हम सीड रिप्लेसमेंट रेट को देखें, जो किसी समय 15-20% से भी कम होता था, अब हम देखते हैं वो 50% को भी क्रॉस कर गया है। तो सीड के क्षेत्र में बहुत विशेष ध्यान है और पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं सरकार।
प्रोफेसर साहब, देश में 2,00,000 गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और उस पर काम भी किया जा रहा है, तो देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या ये एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी?
उसमें दोनों चीजें हैं, खाद्य सुरक्षा भी है और किसान की इनकम भी है। हम अक्सर देखते हैं कि जो कीमतें, जो हार्वेस्ट पीरियड होता है, तब मार्केट अराइवल बहुत ज्यादा होती है, सभी किसान, उनके पास तो जगह नहीं है रखने की, और साइंटिफिक तरीके से रखने की जगह तो है ही नहीं अधिकांश के पास, तो सारा माल लेकर मार्केट आ जाते हैं, प्राइस क्रैश भी हो जाते हैं, काफी मतलब लोएस्ट प्राइस रहती है जब फसल की कटाई के बाद के 5-6 हफ्ते होते हैं। तो किसान लीन पीरियड में जो प्राइसेस में इंक्रीज होता है उस वृद्धि का फायदा ले सके, उनको इस तरह के जो वेयर हाउस की फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है, और उस वेयर हाउस की फैसिलिटी के जरिए यदि कोई किसान अपने उपज पे क्रेडिट लेना चाहे वेयर हाउस रिसीट लेकर, तो उससे दोनों पर्पज हल होंगे। वेस्टेज ऑफ फूड कम होगा, कंज्यूमर के लिए वो अच्छी बात है, और हमारे जो किसान हैं उनको लीन पीरियड में मार्केट में जब अच्छी प्राइस है तब वो अपना मार्केटिंग कर सके, उसमें भी एक जो है बेनिफिट मिलेगा।
प्रोफेसर रमेश चंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे किसान कल्याण के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।